यूएनएचसीआर की जो नई रिपोर्ट कमिंग टुगेदर फॉर रिफ्यूजी एजुकेशन पेश की गई है, उसमें किन प्रमुख बातों का जिक्र है?
ये पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये पांचवी रिपोर्ट है शिक्षा के विषय में जो यूएनएचसीआर ने पेश की है। इससे पहले जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी वो 2016 में आई थी, जिसका नाम था मिसिंग आउट। ये पांचवी जो रिपोर्ट है, जो टाइटल है कमिंग टुगेदर फॉर रेफ्यूजी एजुकेशन, इसमें एक प्राइमरी एजुकेशन का जिक्र किया गया है, सेकेंडरी एजुकेशन का जिक्र किया गया है, और इसमें जो कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि 77% शरणार्थी बच्चे स्कूलों में पंजीकरण है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर यह आंकड़े गिरकर 31% और हाई स्कूल में महज 3% रह जाते हैं। और इन आंकड़ों से को अगर देखा जाए जनरल पब्लिक के हिसाब से ये बहुत ही पीछे हैं। लेकिन यही सिर्फ बात इस रिपोर्ट में नहीं कह गई है, इसमें ये भी बताया गया है कि पिछले साल काफी सारे लोकल कम्युनिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने मिल करके जो रेफ्यूजी एजुकेशन में काम किया है उससे कई सारे फायदे भी हुए हैं, जिनमें से एक ये भी बताया जाता है कि दाफी स्कॉलरशिप के बारे में इसमें एक बात लिखी गई है कि हायर एजुकेशन में दाफी स्कॉलरशिप ने कैसे मदद करी है। तो इसमें कई सारे चैलेंजेस का भी जिक्र है और कई सारे सॉल्यूशन का भी जिक्र है। तो रिपोर्ट एक मिक्स है और 12 देशों से लिए गए आंकड़ों के ऊपर बेस्ड है।
तो दक्षिण एशिया के देशों में और खासतौर पर भारत में क्या स्थिति है फिलहाल? कितने शरणार्थी दक्षिण एशिया में हैं और कोविड महामारी के मद्देनजर पे अगर खासतौर से देखा जाए तो उन इलाकों में बच्चों की शिक्षा किस तरह प्रभावित हुई है?
इंडिया में करीबन 40,000 शरणार्थी जो है यूएनएचसीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं, और बाकी शरणार्थी भी हैं जो कि करीबन जो श्रीलंका से आते हैं, तिब्बत से आते हैं और कई पड़ोसी देशों से आते हैं, वो भी जो है भारत में रहते हैं और उनके आंकड़े सरकार के पास उपस्थित हैं, जो कि कुल मिला के करीबन रेफ्यूजी का अगर आंकड़े देखे जाए तो करीबन 2,00,000 के करीब होते हैं। इंडिया में जो रेफ्यूजी बच्चे हैं वो प्राइमरी एजुकेशन एक्सेस कर पा रहे थे, और महामारी के कारण चूंकि स्कूल बंद हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, कई बच्चों के घरों में इंटरनेट नहीं है तो किसी के घर में बिजली नहीं है, अगर बिजली और इंटरनेट है तो उनके पास वो डिवाइस नहीं है जिससे वो स्कूलों से जुड़े रह सके। तो जहां तक बात करें अभी महामारी में बच्चों की हालत की, वो ये है कि बच्चे डिजिटली एक्सक्लूडेड हैं, जिसके लिए काफी सारे समुदाय जो कि होस्ट कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जहां तक यूएनएचसीआर का बात है या पार्टनर का बात है, उस पर अब काफी फोकस हो रहा है कि हमें कोशिश कर रहे हैं कि उनको डिजिटली इंक्लूड करें, उनको शिक्षा से जुड़े रहें, वरना बहुत बड़ा रिस्क है कि जो पिछले कई सालों में जो कई एनजीओ ने, यूएनएचसीआर ने और सरकार ने, लोकल अथॉरिटीज ने जो कोशिश करी थी इन बच्चों को स्कूल में लाने की, वो फेल ना हो जाए।
तो ये भी माना जा रहा है कि कोविड-19 के कारण शरणार्थी लड़कियों की आधी आबादी स्कूल खुलने पर भी कक्षाओं में नहीं लौट पाएगी, तो क्या माना जाए कि महामारी के कारण लड़के और लड़कियों की शिक्षा के बीच की जो असमानताएं हैं वो और गहरा रही हैं?
ये जो रिपोर्ट में आंकड़े दिए गए थे, ये जो बोला गया था कि जो जेंडर गैप आ जाएगा, और ये खास तौर से मलाला कोश संगठन के अनुमान लगाए गए आंकड़े थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ये 12 देशों से आंकड़े मिले हैं उसमें ये देखा जा रहा था कि अगर इसी तरीके से महामारी का इम्पैक्ट रहेगा तो लड़कियों का स्कूल वापस जाना खासतौर से इन 12 देशों में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो भी प्रतिशत, जहां तक मेरे ख्याल से उसमें 10% की बात की गई है, अगर वो जो स्कूल ऑलरेडी जा रही थी और अगले महीने जो स्कूल खुलेंगे उसमें वो शायद वापस ना आ पाए। जेंडर की जहां तक बात होती है रेफ्यूजी सिचुएशन में, जो इश्यूज डिस्प्लेसमेंट से पहले होते हैं वो तो रहते ही हैं, पर महामारी ने वो जेंडर गैप्स थोड़े बढ़ा देने में एक एडेड लेयर बना दिया है।
क्या लगता है इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, खासतौर पर शरणार्थी बच्चों को लेकर जो पहले से ही कई तरह के संकटों का सामना कर रहे हैं?
काफी मेहनत करी है सरकारों ने मिलकर, एनजीओ ने मिलकर, यूएनएचसीआर के सबके साथ मिलकर के काफी मेहनत करी थी कि रेफ्यूजी बच्चे स्कूल जाने लगे, क्योंकि अब वैश्विक महामारी के मद्देनजर काफी स्कूल जो बंद किए जा चुके हैं और अब ये भी नहीं पता कि स्कूल कब तक खुलेंगे और ये महामारी कब तक चलेगी। तो इसमें ये एक डर लगा हुआ है कि कहीं इन बच्चों का शिक्षा पर से एक जो रेगुलरिटी है वो छूट ना जाए। तो उसके लिए इस रिपोर्ट में बोला गया है कि सभी लोगों से अनुरोध है कि वो साथ मिलकर रेफ्यूजी बच्चे और उनकी होस्ट कम्युनिटी को, जहाँ पे वो रहते हैं, उनको शिक्षा से जोड़े रहने के लिए इनोवेटिव तरीके इजाद करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो बहुत मेहनत करी थी पिछले कुछ सालों में, उस मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है एजुकेशन से रिलेटेड, उसको अचीव करने में भी दिक्कत आ सकती है।
तो स्थिति से निपटने के लिए यूएनएचसीआर किस तरह के प्रयास कर रहा है? क्या रिपोर्ट में इसे लेकर कुछ सुझाव भी दिए गए हैं?
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस रिपोर्ट में सिर्फ कुछ ऐसे आंकड़े ही पेश नहीं करे गए हैं जैसे कि शिक्षा से रिलेटेड, पर कुछ ऐसे अच्छे गुड प्रैक्टिसेस भी दिए गए हैं, जिसमें कई जगह पे दिखाया गया है कि कैसे कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, या फिर जो टैबलेट या डिवाइस होते हैं उनको शिक्षा के मटेरियल से प्रीलोड करके उसमें पहले से ही शिक्षा का मटेरियल डाल करके बच्चों के पास दिया जा रहा है जिनके पास इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है। तो कई तरीके के इसमें सुझाव दिए गए हैं जो कि कई देशों में काम चल रहा है उन सुझावों पर। अगर ऐसे सुझाव और ऐसे जैसे रेडियो वाला हो गया, या फिर एक जगह पे ये भी बताया गया है कि लोग जो है साइकिल पर जा जा के बच्चों को पढ़ा रहे थे, स्कूलों को घरों पे ला रहे थे, तो ऑनलाइन को ऑफलाइन बना रहे थे। तो ये इस तरीके के सुझाव अगर दूसरे देशों में भी ले जाए जाए और रेफ्यूजी और उनके होस्ट कम्युनिटी के साथ इन सुझावों का इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत फायदा मिल सकता है।